તારીખ 2/9/1998 શ્રી સમયસર કલશટીકા શ્લોક નંબર 9 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 110
આજ પર્યુષણ પર્વ કા સાતમા દિન ઉત્તમ ધર્મ કા जो एक पहलू है तप जिसको कहते हैं उत्तम तप सम्यक दर्शन पूर्वक स्वरूप स्थिरता बढ़ती है अधिक होती है तो उसको स्वरूप का प्रतपन कहने में आता है। तप शब्द का शब्दार्थ है तेज, जो स्वरूप का एकाग्रता से प्रतपन से स्वरूप स्थिरता में वितरागता बढ़ जाती है तो आत्मा का जो तेज है वो भी बढ़ता है। वो पुद्गलात्मक तेज नहीं है, आत्मा का तेज कहो, आत्मा की शोभा कहो, आत्मा की आभा कहो, एक ही बात है। आज के दिन में उसका वर्णन किया जाता है। पद्मनंदी आचार्य ने तप का वर्णन इस प्रकार से कहा है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो उत्तम तप है वह संसार समुद्र से पार होने के लिए जहाज के समान है, जहाज के समान है। मैंने मनुष्य संसार को तीर जाता है, तप से तीर जाता है, क्योंकि एकाग्रता बढ़ने से ही पूर्ण एकाग्रता होगी और वितरागता बढ़ जाने से अनेक प्रकार के विकल्प का नाश होता है, अनेक प्रकार की प्रकृतियों का भी क्षय हो जाता है, तो बाह्य प्रवृत्ति भी बंद हो जाती है। दूसरों को भी मालूम पड़ता है कि तपश्चर्या करते हैं। मूल बात तो चली गई है, अभी संप्रदाय में उपवास आदि को तप मानने लगे हैं लोग, और जो भी उपवास करते हैं उसको तपश्चर्या मानते हैं और ऐसा ही चलता है। वास्तव में सम्यक दर्शन के बिना तप नहीं होता, हो ही नहीं सकता। मानना वो एक मिथ्या मान्यता है, ग्रहित मिथ्यात्व है और इसके सिवा और कुछ नहीं है। अगर नहीं खाना वही तप होता तो लंघन में और उपवास में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। तप से तो निर्जरा होती है, शुभ भाव करने से निर्जरा नहीं होती, शुभ शुभ प्रकृति का बंध होता है और उसमें मिथ्या मान्यता होती है, तो मिथ्यात्व सहित अशुभ का बंध ज्यादा और शुभ का बंध कम होता है, तो उसको तप कहना तो यथार्थ नहीं है। जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित स्वरूप में स्थिर होते हैं उनको निर्जरा होती है, और उनके लिए आचार्य ने सूत्र बनाया तपसा निर्जरा च, तपश्चर्या से निर्जरा होती है। लेकिन वो तप है स्वरूप स्थिरता की बात है। उस स्वरूप स्थिरता अधिक होने से खाने का विकल्प नहीं आए, उसकी कोई नकल कर दे कि हमको नहीं खाना है इसलिए तपश्चर्या है, वो बात तो नहीं है। इस तरह से मूल निश्चय यथार्थ वास्तविक तप को समझ में लेना चाहिए। इसको अंतरंग तप कहते हैं। फिर ऐसे तप के पहले कोई विकल्प होता है, उस विकल्प को बाह्य बहिरंग तप कहते हैं। और इनके 12 भेद हैं। बाह्य तप के मैंने 12 प्रकार के विकल्प के वो भेद हैं। उसमें अनशन भी है, नहीं खाने का पचकान लेते हैं, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, विसर्ग, स्वाध्याय और ध्यान। तो स्वाध्याय में भी इसका समावेश किया है, ध्यान का भी समावेश किया है। तो हमारी भूमिका स्वाध्याय की है, लेकिन सम्यक दर्शन पूर्वक होवे तब तो उसको तप किया जाए। अगर सम्यक दर्शन पूर्वक स्वाध्याय का विकल्प नहीं हो तो उसको तप कहना नहीं चाहिए। लेकिन भूमिका अनुसार क्रिया होती है, भूमिका अनुसार परिणाम होते हैं। इससे आगे वाली बात को अपने लिए मान लेना वो तो ठीक नहीं है। इस तरह से संक्षेप में तप के विषय में स्पष्टीकरण है। चलते स्वाध्याय में कलश टीका का 9वां कलश है। भावार्थ ऐसा है, 11वां पेज में नीचे का दूसरी पंक्ति, जैसे सूर्य प्रकाश अंधकार से सहज ही भिन्न है, वैसे स्वानुभव भी समस्त विकल्पों से रहित ही है। सूर्य का प्रकाश अंधकार से रहित है, वैसे ज्ञान प्रकाश अज्ञान अंधकार से या विकल्प से रहित है। विकल्प है वो राग है, अंधकार है। यहाँ कोई प्रश्न करेगा कि स्वानुभव होने पर कोई विकल्प रहते हैं कि जिसका नाम विकल्प दिया जाए वे समस्त विकल्प मिट जाते हैं, ऐसा प्रश्न किसी को हो सकता है। उत्तर ऐसा है कि समस्त विकल्प मिटते हैं। यहाँ तक कल आए थे, समस्त मैंने तत्वज्ञान के विकल्प, स्वरूप के विकल्प भी मिट जाते हैं, ये कहने का यहाँ अभिप्राय है। यही कहते हैं कि नैश्री अपि न उदयति, प्रमाणम अस्तमिति, न विद्मः, हम जानते नहीं, न विद्मः, हम जानते नहीं, निक्षेप चक्रम क्वचित याति, निक्षेप के चक्कर कहाँ चले जाते हैं वो तो हम जानते भी नहीं। अपरम किम अभिदग्नदग्मः, दूसरे विकल्प की तो क्या बात करें, जो दूर के विकल्प हैं वो तो होते ही नहीं है तो इसकी चर्चा ही क्यों करें। होते हैं क्या कि नए प्रमाण निक्षेप के विकल्प आखिर में चलते हैं, निर्विकल्प ध्यान के पहले दूसरे संसार के विकल्प तो चलते नहीं, दूसरे शुभाशुभ के विकल्प भी चलते नहीं, तो फिर इसकी तो चर्चा ही क्यों करें, तो वो तो चलते ही नहीं थे। जी नय का विषय को निक्षेप कहते हैं। नय का जो विषय होते हैं उसको निक्षेप कहते हैं, और शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने उसको चार भेद में विभाजित किए हैं। द्रव्य स्थापना, नाम और भाव, ऐसे चार उनके विषय होते हैं। कोई नहीं का विषय द्रव्य होता है, किसी का भाव होता है, किसी का नाम होता है, किसी की स्थापना होती है। जैसे भगवान की प्रतिमा की स्थापना करते हैं, वो स्थापना निक्षेप का विषय है। वहाँ तीर्थंकर भगवान का जीव द्रव्य नहीं होते हुए भी उनको तीर्थंकर के रूप में हम पूजते हैं, तो वो द्रव्य निक्षेप है। किसी ने किसी तीर्थंकर का नाम भी दिया जाता है और नाम नहीं भी दिया जाता है, दोनों प्रकार की स्थापना होती है। तो जहाँ नाम दिया जाता है वो नाम निक्षेप है। नाम निक्षेप के और भी दृष्टांत हैं, जैसे आपका नाम जयेंद्र है, इंद्रियों का जय जिसने किया हो, हाँ, लेकिन वास्तव में तो जय नहीं किया हो, फिर भी नाम तो है ही, तो नाम निक्षेप से है। और वास्तव में अगर जय किया हो तो वो भाव निक्षेप से है। ऐसे ऐसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव चार प्रकार के निक्षेप हैं, और वो विभिन्न नयों का विषय होता है। सम्यक ज्ञान का वो विषय है, मिथ्या ज्ञान का विषय नहीं है, सम्यक ज्ञान का विषय है। इसका अर्थ करते हैं कि जो अनुभव आने पर प्रमाण नए निक्षेप भी झूठे हैं। देखो टीका करने की पद्धति, शब्दार्थ ऐसा नहीं है, वो तो उदय नहीं होता है, वो अस्त हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है, ऐसा शब्दार्थ है। अब क्या बात लिया कि पहले मिथ्यात्व अवस्था में ऐसे विकल्प चलते थे, उस विकल्प रूप अपना अनुभव होता था, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा विकल्प करने वाला। जब अनुभव हुआ शुद्धात्म स्वरूप का, तब मालूम पड़ गया, करे वो अनुभव जैसा होता था वैसा मैं नहीं था, इसका मतलब कि ये अनुभव झूठा था। शैली है, अध्यात्म शैली है राजमल जी की, कि जिस आत्मानुभव होने पर प्रमाण नए निक्षेप रूप, वो विकल्प रूप अपना अनुभव भी झूठे हैं, तब दूसरे रागादि विकल्पों की क्या कथा करे, क्या बात करे। संसार में तो लोग ऐसा समझते हैं कि देखो हमको हमारे पुत्र के साथ बात करने पर हमको पिता के रूप में अनुभव करते हैं, पत्नी के साथ बात करते वक्त हम पति के रूप में हमारा अनुभव करते हैं, और पिताजी से बात करते हैं तो विनय से हमारे पुत्र के रूप में अनुभव करते हैं। क्योंकि ये तो बहुत झूठी बात है, उसकी तो हम चर्चा ही क्या करेंगे, इसकी तो हम चर्चा भी करने वाले नहीं। लेकिन आत्मा का विकल्प होता है और वो विकल्प रूप अनुभव होता है, ऐसा आत्मा नहीं है। जैसा आत्मा का विकल्प है वैसा आत्मा नहीं है। देखो क्यों, कि विकल्प एक कल्पना है, और जो भी कल्पना है वो वास्तविकता से विरुद्ध है, या अन्यथा है, कल्पित है, कल्पना मैंने कल्पित भाव है, वास्तविकता से दूर है वो, इसलिए जैसा विकल्प है ऐसी कल्पना नहीं है, ऐसी परिस्थिति नहीं है, वो कल्पना है, इसलिए वो झूठ है। क्या है वो? झूठ है। जैसे स्वप्न झूठ है, स्वप्न है वो झूठ है। भावार्थ ऐसा है कि रागादि तो झूठे हैं ही, रागादि भाव है ऐसा तो कोई वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। जितने भी राग है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। कोई भी प्रश्न ले आइए कि हमको ऐसा राग हुआ ऐसा वस्तु का स्वरूप है कहने में कि नहीं है। कोई भी तर्क लाइए, कोई भी प्रश्न लाइए, स्वरूप का विकल्प है ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। दूसरा कोई भी राग ले लो, ये चीज अच्छी है, राग में क्या होता है? अच्छी चीज, कोई चीज अच्छी नहीं है। सुगंध तो अच्छी होगी ना, दुर्गंध अच्छी नहीं है, वो बात है। फिर राग है वो पर अभिलाष है, राग है वो क्या है? पर की अभिलाषा है। तो आत्मा को तो कोई चीज मिलती नहीं, आत्मा एक ज्ञान स्वरूप पदार्थ है और सब उनके ज्ञेय है। ज्ञेय से आगे कोई बात है ही नहीं, फिर भी अभिलाष करता है वो एक मिथ्या कल्पना से करता है और कुछ बात नहीं है। जीव स्वरूप से बाह्य है, रागादि झूठे ही है और जीव स्वरूप से बाह्य है। जीव के स्वरूप में तो राग विकल्प है ही नहीं। प्रमाण नय निक्षेप रूप बुद्धि द्वारा एक ही जीव द्रव्य के द्रव गुण पर्याय रूप अथवा उत्पाद वे ध्रुव रूप भेद करने में आते हैं, ये सभी झूठे हैं। वस्तु अभेद निर्विकल्प है, जितने भी भेद करने में आते हैं वो भेद झूठे हैं। एक दृष्टांत और ले कि एक 20 मीटर का थान है, थान मैंने ताका, गुजराती में ताको कहते हैं, तो उसमें कोई 20 भेद है क्या? थान तो सलंग है, एक एक मीटर पर कोई सांध भी नहीं है जॉइंट किया हो, 20 भेद उसमें है ही नहीं, एक ही चीज है। लेकिन कितना लंबा है वो समझने के लिए भेद करना पड़ता है, नहीं है तो भी, भेद नहीं है तो भी भेद उठाना पड़ता है समझने के लिए। ऐसे आत्मा निर्भेद पदार्थ है, समझने के लिए द्रव गुण पर्याय उत्पाद वे ध्रुव ऐसा भेद करने में आता है। फिर भी यहाँ कहने का आशय यह है कि ऐसे भेदरूप वस्तु नहीं है, तो आप भी उस भेदरूप वस्तु का अनुभव मत करो। जब वस्तु भेदरूप नहीं है तो भेदरूप अनुभव मत करो, उसका अभेद अनुभव करो, ये कहने का आशय है। और अनुभव करने, अभेद अनुभव करने पर अब कहेंगे कि ये सब झूठे हैं, जो कोई वस्तु का स्वाद है वह अनुभव है, विकल्प का जो स्वाद या अनुभव है वो तो झूठा ही है, और ये सब झूठे होने पर जो वस्तु का स्वाद आता है वो अनुभव है। बात को किस तरह से पुटअप करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि आपको अभी आत्मा का विकल्प होने लगा कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, पूर्ण हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ध्रुव हूँ। ये जो विकल्प के काल में विकल्प के साथ एकत्व हुआ और विकल्प रूप अपना अनुभव हुआ, वो अनुभव सही है। वहाँ तक तो आत्मा का स्वरूप का स्वाद रूप अनुभव नहीं आएगा, वो झूठ है। ऐसा होने पर जो अनुभव आएगा वो आत्मा का सही अनुभव है, सम्यक अनुभव है, वही स्वाद है, सच्चा है, ऐसा कहते हैं। बात दो तरफ से लिया, पहले ऐसा किया कि अनुभव होने पर वो सब झूठा मालूम पड़ता है, अब कहते हैं कि झूठा मालूम पड़ने पर ही अनुभव आएगा, इसके पहले अनुभव नहीं आएगा। बात तो एक ही है, समझाने की शैली है, तरीका है। अब दोनों साइड से समझाते हैं क्यों है, जब एक ही बात है तो कि किसी को किसी प्रकार का मिसकॉन्सेप्ट है, किसी को किसी प्रकार का मिसकॉन्सेप्ट। जैसे कि कोई विकल्प में चढ़ते हैं आत्मा के, मैं नायक हूँ। तो यहाँ इसको पूछा जाता है कि आपको ये विकल्प झूठे लगते हैं या सही लगते हैं? जब तक सही लगते हैं आपको अनुभव नहीं आएगा, झूठे लगने पर जो अनुभव है वो सही अनुभव है। तो ऐसा समझाने से जो नायक का या स्वरूप का विकल्प हो रहा था उसके पर जो वजन था वो वजन छूट जाएगा और तभी अनुभव आएगा। जब तक वजन रहेगा वो विकल्प छूटेगा नहीं और निर्विकल्प अनुभव होगा नहीं। इसलिए कहा, तो इस तरह से बात समझाई। अब अनुभव को समझाते हैं कि वो अनुभव हुआ तो अनुभव में क्या हुआ, कि अनुभव में एक ऐसी बात हुई कि पहले वाले विकल्प सिर्फ झूठे मालूम पड़ने लगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनुभव भी सही नहीं हुआ है, ऐसा कहते हैं। मैंने स्वरूप संबंधित विकल्प का भी स्थान क्या है कि सच के आगे झूठ का जो स्थान है वो है। स्वरूप संबंधित जो विकल्प है वो विकल्प का स्थान क्या है कि सच के आगे जो झूठ का स्थान होता है वो स्थान है। सुख के आगे जो दुख का स्थान, क्योंकि वो उसमें आकुलता है, विकल्प में आकुलता है। 144 में गाथा मान लिया, श्रुत ज्ञान की और मति ज्ञान की बुद्धि में जो आकुलता हो रही थी वो आकुलता के हट करके अनुभव होता है। क्यों कि सही कार्य पद्धति में जो लोग नहीं होते हैं, यानी स्वरूप का भाव भाषण हो करके स्वरूप लक्ष्य से स्वरूप का जो विकल्प चलता है उनको विकल्प पर वजन नहीं रहता, अपने लक्ष्य के विषय पर उसका वजन है, स्वरूप पर इसका वजन है जो निर्विकल्प है। स्वरूप कैसा है? निर्विकल्प है। और निर्विकल्प स्वरूप पर वजन होने से वो वजन बढ़ जाता है तो स्वरूपाकार निर्विकल्प दशा हो जाती है, ऐसे अनुभव आता है। जिसको स्वरूप की पहचान नहीं हुई फिर भी वो बौद्धिक स्तर पे आत्मा को अनेक भेद प्रभेद से विकल्पात्मक स्थिति में समझकर उसके विकल्प में लगे रहते हैं, उनका वजन विकल्प पर रहेगा। स्वरूप को ज्ञान में है ही नहीं, कहां से उस पर वजन आएगा? तो उनके लिए ये बात प्रयोजनभूत है कि ये विकल्प झूठा होने पर जो अनुभव आता है वही अनुभव है। तुम्हारा बिल्कुल वजन नहीं होना चाहिए विकल्प पर, तभी तुम्हारा काम होने वाला है, वरना होने वाला नहीं है। इसलिए पद्धति से बात किया है, क्योंकि जो भावभाषण की प्रयोग पद्धति में नहीं आते वे लोग आत्मस्वरूप को शास्त्रों से, शास्त्रों के दौरान समझ करके विकल्प में चढ़ जाते हैं। मैं ध्रुव हूँ, मैं नायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं नायक। और ये हालात हुई है आज हम लोगों के, इसके लिए बहुत प्रयोजनभूत बात है। तथा नाना प्रकारना नय पक्षोना अवलंबन थी थता अनेक विकल्प, जे विकल्पों वड़े आकुलता उत्पन्न करनारी श्रुत ज्ञानी बुद्धियों ने पण मर्यादा में लावी ने, श्रुत ज्ञान तत्व ने पण आत्मसन्मुख करतो अत्यंत विकल्प रहित थईने तत्काल निज रसथी एटले आत्मरसथी प्रगट थता आदि मध्य अंत रहित अनाकूल केवल एक आखाय विश्वना ऊपर जाने के तरतो होय तेम अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समयसार ने जारे आत्मा अनुभवे छे ते वक्ते ज आत्मा सम्यकपणे देखाय छे, श्रद्धाय छे अने जणाय छे, तेथी समयसार ज સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન છે. એ પહેલા સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન એવું નામ કોઈ પણ પર્યાયને દઈ શકાય નહીં, એમ અહીંયા કહેવું છે. એટલે ત્યાં આકુળતા ઉપજાવનારી બુદ્ધિ લીધી છે. જે નયથી વિકલ્પ ચાલે છે ત્યાં આકુળતા ઉત્પન્ન છે. આકુળતા ન હોય તો ત્યાં તો સાતા વેદની ઘણી છે. એકદમ મંદ કષાયથી સ્વરૂપના વિકલ્પ ચાલતા હોય છે. મંદ કષાયમાં આકુળતા પણ મંદ થાય છે, તીવ્ર કષાયમાં આકુળતા પણ તીવ્ર થાય છે. હવે મંદ કષાયના પરિણામો અનેક પ્રકારના છે. એમાં સૌથી વધુમાં વધુ મંદ કષાયના પરિણામ કષાય રહિત એવું જે આત્મસ્વરૂપ છે એના વિકલ્પ વાળી દશા છે. તેથી વધારે મંદ કષાય એમાં સૌથી વધુમાં વધુ મંદ કષાય આત્મસ્વરૂપના વિકલ્પ વખતે ધ્યાન પહેલા હોય છે, નિર્વિકલ્પ ધ્યાન પહેલા. એમાં પણ આકુળતાનો અનુભવ થાય, સાતાની શાંતિનો અનુભવ ન થાય, ત્યારે જીવ ત્યાંથી ખસીને નિર્વિકલ્પ દશામાં આવે, નહીતર ન આવી શકે. નિર્વિકલ્પ ધ્યાન કી યહ વાસ્તવિકતા હૈ, વો બાત કા વિવરણ વર્ણન કિયા હૈ 144 ગાથા કી ટીકા મેં. और यहां तो कहते हैं कि वो जूठा होने पर ही कुछ वस्तु का जो कुछ अनुभव होता है, वस्तु का जो स्वाद आता है, वही स्वानुभव है. वो सच्चा लगे वस्तु का स्वाद आएगा नहीं और स्वानुभव होगा नहीं. तो ज्ञानी तो पूछेंगे, कोई कहेंगे कि नहीं हम तो हमको जो भाव आता है बराबर आता है, तो कहते हैं कि वो झूठा लगता है क्या? झूठा लगने पर अनुभव होगा, इसके पहले अनुभव होने वाला ऐसा कहा. એવું છે, આત્મા જ્ઞાન તત્વ હૈ. આત્મા હૈ સો જ્ઞાન તત્વ હૈ. ઓર જ્ઞાન મેં આકુલતા નહીં હૈ, વિકલ્પ મેં આકુલતા હૈ. ક્યા હૈ? જ્ઞાન મેં આકુલતા નહીં હૈ, વિકલ્પ મેં આકુલતા હૈ. ઓર વિકલ્પ મેં જ્ઞાન નહીં હૈ. તો ઉન દોનો ભાવો કે બીચ મે જો ભેદ હૈ, અંતર હૈ, તફાવત હૈ, વો ભેદ જ્ઞાની કો અનુભવ મેં આતા હૈ. ઇસલિયે સ્વાનુભૂતિ કો ભેદ વિજ્ઞાન મૂલામ એસા બોલા હૈ. સ્વાનુભૂતિ કૈસી હૈ કે જિસકા મૂળ ભેદ વિજ્ઞાન હૈ વૈસી હૈ. તો કમ્પેરેટિવ તુલનાત્મક વહાં ઓબ્ઝર્વેશન હોતા હૈ, અનુભવ કા અવલોકન હોતા હૈ. ક્યોંકિ આકુલતા ઓર નિરાકુલતા અનુભવ કરને કી ચીજ હૈ, વિચાર કરને કી નહીં. કોઈ એસા નહીં કહેગા कि हमको ये चीज खाते खाते सुख का विचार आया, हमको सुख का अनुभव हुआ, ऐसा बोलेगा कि मिठाई खाते खाते सुख का अनुभव हुआ। सुख का विचार हुआ था क्या? क्या अनुभव हुआ था? क्या अनुभव हुआ था? वो अनुभव की चीज है, विचार की चीज नहीं। आकुलता रूप दुख, निराकुलता रूप सुख, दोनों अनुभव की चीज है, विचार का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। तो दोनों का कंपेरेटिव अनुभव ज्ञान होता है, क्योंकि दोनों भाव एक साथ चलता है, दोनों की मौजूदगी एक साथ है और दोनों का अनुभव भी एक साथ है। तो स्वाभाविक है कि जिसको आकुलता लगेगा वो यहाँ से हटेगा, निराकुलता लगेगा वहां जाएगा। तो जीव स्वभाव है, सुख में रहना वो जीव का स्वभाव है, दुख से हटना वो जीव का स्वभाव है। बस वेद ज्ञान बिना तो ये बात होने वाली नहीं है, अनुभव आने वाला है ही नहीं। वेदना के क्रम से शुरू होकर के पदार्थ निर्णय से वेद ज्ञान चालू होता है। यथार्थ वेद ज्ञान पदार्थ निर्णय के बाद होता है, जो 254 पत्र में, फिर अनुभव आता है। इसके पहले किसी को अनुभव हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। ये तो पद्धति की बात हो गई। એમાં ભેદ જ્ઞાન ચાલે, એ વિકલ્પ સાથે ભેદ જ્ઞાન ચાલે। હા, એ વિકલ્પમાં દુઃખ લાગે, લાગે ને લાગે, પહેલા એ લાગે અને પછી એ લાગે। હા, એ પછીના જે વિકલ્પ છે એ કલ્પના જ સમજાય છે, આ કલ્પના છે। પણ ત્યાં શું છે કે અનુભવ પછી સાચું જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન વર્તે છે। સમ્યક જ્ઞાનમાં તો ચોખ્ખી કલ્પના લાગે કે આ ભેદ ઉઠ્યો એ જ કલ્પના છે, ભેદ પડ્યો એ જ કલ્પના છે, આત્મામાં ક્યાં ભેદ છે? આત્મામાં તો ભેદ નથી। એક દ્રષ્ટાંત લઈ લો, આપકે ઘર કે પરિચિત કોઈ વ્યક્તિ હૈ, इसका નામ લિયા જાય તો ભેદ ઉઠતા હૈ ક્યા? ऐसी है, वैसी है, बोलने में ऐसी है, देखने में ऐसी है, चलने में ऐसी, ऐसा कोई विचार चलता है क्या? नाम होता है, पूरा अभेद ज्ञान हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्यों नहीं होता है? हम सोने के आभूषण पहनते हैं, एक सोने की अंगूठी है, तो सोने की अंगूठी है बोलते ही सोना का अभेद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो भेद करना पड़ता है कि इसमें इतना भाव है, इतना उसमें पीलापन है, उतना वजन है, उतना वो है, उतना चिकनापन है। सोने के गुण भेद में जाना पड़ता है क्या कि नहीं? नाम मात्र से अभेद ज्ञान होता है, वही सच्चा ज्ञान है। जब तक अभेद ज्ञान नहीं होता है तब तक पहचान करने के लिए भेद करना होता है कि सोना कैसा होता है। अच्छा, वो व्यक्ति की बात करते हो, वैसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, ऐसा कब पूछना पड़ता है? कब पूछना पड़ता है? जब तक पहचान नहीं है तब तक। पहचान वाले को तो नाम दे दिया, बात खत्म हो गई, हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अभेद ज्ञान है वो परिपक्व ज्ञान है, ज्ञान की एक मैच्योर्ड पोजीशन है। पर जब तक भेद उठाना पड़ता है वो ज्ञान इमैच्योर्ड है, वहाँ तक परिपक्व ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा कहने का अभिप्राय। अनुभव हाँ, वो मिट जाती है, वो भिन्न पड़ जाता है। विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता तो किसके साथ एकत्व हो? निर्विकल्प अनुभव में तो विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता तो एकत्व किसके साथ होएगा उपयोग का, तो सवाल ही पैदा नहीं। बस वो एकत्व टूट गया, वो हमेशा के लिए टूट गया। फिर युगपद, अब प्रमाण किसको कहते हैं? युगपद अनेक धर्म ग्राहक ज्ञान, यह भी विकल्प है? नहीं, माने वस्तु का किसी एक गुण का ग्राहक ज्ञान, यह भी विकल्प है। निक्षेप उपचार घटना रूप ज्ञान, दूसरे पर उपचार करना नाम से स्थापना से, यह भी विकल्प है। भावार्थ ऐसा है कि अनादि काल से जीव अज्ञानी है। क्या है? अनादि काल से जीव अज्ञानी है। जीव के स्वरूप को नहीं जानता, अपना स्वरूप को वो नहीं जानता कि अपना मूल स्वरूप कैसा है। वह जब जीव सत्व की प्रतीति आनी चाहते हैं तब जिस रीति से प्रतीति आती है वैसी ही रीत से वस्तु स्वरूप साधने में आता है। गोल गोल बात हुआ क्योंकि वो प्रयोगात्मक बात है। अनादि से जीव अज्ञानी है, अब उसको प्रतीति नाम सम्यक दर्शन करना है तो उसकी जो रीत है वही रीति से वो होगा, दूसरी रीति से ये प्रतीति आने वाली है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? रीत एक ही प्रकार की है, दो प्रकार की रीत है ही नहीं। जो रीत से काम होता है वही रीति से होता है, दूसरी रीति से नहीं होता। वह साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो समझने के काल में वो भेद बीच में आए बिना रहता नहीं, भेद को समझाने में भी भेद बीच में आए बिना रहता नहीं। जैसे हम दृष्टांत लिया था थान का, तो एक थान है और इसमें से अपन को जो कुछ बनाना है वो बना सकते हैं, कपड़े की चीज, लेकिन नाप नहीं होवे कि कितना मीटर है वहां तक, क्या चीज कितनी बनाना वो कैसे मालूम पड़े? बिना नाप तो कभी 20 मीटर का थान है तो ठीक है, तब तो उसमें से अच्छी बड़ी बेडशीट बना सकेंगे, फिर भी कुछ बातें जो कुछ टुकड़े हो तो उसका वो पिलो कवर ये सब हो जाएगा। हाँ, लेकिन बात 20 मीटर वाला भेद मालूम नहीं पड़े तो क्या बनाना, कैसे बनाना, वो थान का वास्तविक स्वरूप तो मालूम पड़ेगा ही नहीं कि थान मैंने कितना लंबा, थान मैंने थान फिर कितना लंबा। तो भेद का ज्ञान अपेक्षित होता है, ऐसे स्वरूप साधना में भी भेद का ज्ञान अपेक्षित होता है, और वो भी अपेक्षा अभेद स्वरूप को अवलंबन करने के लिए होनी इच्छा ही है। इसलिए श्री गुरु जब भेद से आत्मा को समझाते हैं, तब समझाते इस वक्त भी साथ साथ एक सूचना करते हैं कि देखो हम तुमको भेद से तो समझाते हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन भेद समझाने का नहीं है, हमारा प्रयोजन अभेद को समझाने का है। लेकिन बिना भेद अभेद को समझाया नहीं जाता, ऐसी एक परिस्थिति होने से हम तुमको भेद से समझाते हैं, लेकिन तुमको भी अभेद को ही समझना है भेद के द्वारा भी। ये बात साथ साथ कही जाती है, जब भेद को बताते हैं तब वो बात साथ साथ कही जाती है ही। जिसको जिसकी दृष्टि प्रयोजन पर है वो प्रयोजन को पकड़ता है, जिसकी दृष्टि प्रयोजन पर नहीं है वो भेद को पकड़ लेता है, वो अभेद प्रयोजन भूत अभेद वस्तु को नहीं पकड़ता है। बस यहाँ फर्क पड़ता है, वो जो पड़ता है फर्क वहां पड़ता है। हाँ है? हाँ, जिसकी दृष्टि प्रयोजन पर है वो भेद में नहीं रुकेगा, भेद को समझने पर भी भेद में रुकने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, समझाने का एक व्यवहार है, विकल्प है, वो व्यवहार है जो दो के बीच में होता है। बात तो विचार में आई थी कि हमको ऊपर जाना है, पहले माल पे जाना है, सीढ़ी चढ़ते हैं हम, तो सीढ़ी के बिना तो हम हमारे घर में ऊपर जा सकेंगे नहीं। एक माल का हमारा मकान है तो हमको ऊपर जाना है, सीढ़ी के सिवा तो कोई ऊपर जाने का रास्ता है नहीं हमारे पास। तो सीढ़ी पर चढ़ने लगेंगे तब तो ऊपर जाएंगे, तो सीढ़ी पर पैर रखना पड़ता है, तो रखना भी पड़ता है उठाना भी पड़ता है। अब कोई असरलता से तर्क करे कि जब आपको सीढ़ी पर से पैर उठाना था तो रखा ही क्यों, कि बिना रख के ऊपर जा नहीं सकते और बिना उठा के भी ऊपर जा नहीं सकते, रखना भी हो गया होता है और उठाना भी होता है, तभी तो ऊपर जाया जाता है। ऐसे भेद में आए बिना अभेद में जा नहीं सकते, और भेद में रुकने से भी अभेद में जा नहीं सकते। बात ऐसी है, इसलिए यहां पर कहा कि यह साधना गुण गुणी ज्ञान द्वारा होती है, दूसरा उपाय तो कोई नहीं। अतः वस्तु स्वरूप को गुण गुणी भेद रूप विचारने पर प्रमाण नहीं निक्षेप रूप विकल्प उत्पन्न होते हैं। ये वस्तु के स्वरूप को समझने की सिस्टम है, पद्धति है। इस पद्धति के बिना वस्तु के स्वरूप को समझे नहीं जाते। बहुत व्यवस्थित पद्धति है समझने की। जैन दर्शन में वस्तु के स्वरूप को समझने की जो ये पद्धति है प्रमाण नहीं निक्षेप वाली, वो विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं है। क्योंकि प्रमाणनी निक्षेप में पदार्थ का विज्ञान है वो इन्वॉल्व होता है। आत्मा एक अरूपी पदार्थ है, उसका अपना गुणधर्म है, वही वस्तु का विज्ञान है। वो विज्ञान को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए द्रव्यगुण पर्याय का भेद विचार में लिया जाता है, और अरूपी वस्तु है वो केवल ज्ञान में ही सब पूर्ण रूप से ज्ञान में आई है, और जगह केवल ज्ञान नहीं होने से अरूपी वस्तु का ज्ञान नहीं है और विज्ञान नहीं है, तो उसको विज्ञान को समझाने के लिए सिस्टम भी नहीं है वहाँ। इसलिए द्रव्यगुण पर्याय वाली नई प्रमाण निक्षेप वाली सिस्टम कहीं जैन दर्शन के अलावा है ही नहीं। कृपालु देव ने मनसुख राम सूरी राम को ये प्रश्न पूछा है कि किसी भी पदार्थ का ज्ञान, शास्त्र विद्वत भाषा में बात किया है, किसी भी पदार्थ की प्रज्ञापनीयता, ऐसा लिखा है। वो सामने विद्वान है ना, तो विद्वत भाषा में लिखा है, चार प्रकार से होती है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। आत्मा भी एक पदार्थ है, तो उसकी प्रज्ञापनीयता द्रव्यशील का क्षेत्र काल भाव से कहिएगा। वेदांत में वो बात है ही नहीं, कहाँ से कहेंगे। और विद्वान ना भी नहीं दे सकता कि कोई पदार्थ है और उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जाने बिना उसका स्वरूप को कोई जान सके, वो बात तो हो ही नहीं सकती। तो उनके लिए पिन पॉइंट प्रश्न रखा है, बात आई है, 22 साल की उम्र में वो बात चली है। इसलिए वस्तु स्वरूप को गुण गुणी भेद रूप विचारने पर प्रमाण नय निक्षेप रूप विकल्प उत्पन्न होते हैं। वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही है, प्रथम अवस्था मैंने समझने के काल में तो उसका प्रयोजन है, लेकिन वो प्रयोजन समझने के काल पूर्ता लिमिटेड है। जैसे सीढ़ी पर पैर रखें, उतना लिमिटेड बात है, रखना का प्रयोजन नहीं है, रखने के साथ उठाने का भी प्रयोजन है, वो बात साथ साथ है, तब तो ऊपर जाया जाएगा। अगर हम रुक गए सीढ़ी पर पैर रखते ही ऊपर नहीं जा सकेंगे, बस वो बात है। इसलिए वे विकल्प प्रथम अवस्था में भले ही है तो भी स्वरूप मात्र अनुभवने पर झूठे हैं, ऐसे बात है। स्वरूप का अनुभव मात्र होने पर अनुभव होता है कि ये झूठे थे, वो कल्पना थी, जैसी कल्पना थी ऐसी मूल वस्तु है ही नहीं, ऐसी बात है। ये बात बहुत समझने लायक है, इसलिए कि हम लोग स्वाध्याय करते हैं, आत्मज्ञान करना है, इसलिए आत्मा के विषय में बहुत सी बातें चलती हैं और हम भेद से समझते हैं। वो भेद एक कल्पना है, वो अगर हमारे ध्यान में नहीं रहता तो हमारा जो द्रव्यगुण पर्याय वाला ज्ञान है वो सही ज्ञान है, ये बात आए बिना रहेगी नहीं। और जब तक ये बात चालू रहेगी कि हमारा द्रव्यगुण पर्याय वाला ज्ञान सही है, तब तक अवैध अनुभव आने वाला है। बात ऐसी विचित्र है, इसलिए अभेद अनुभव तक पहुंचने में अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों को भी भीतर में उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। एक भीतर में कोऑर्डिनेशन करने की चीज है कि अनुभव के काल में भेद से अनुभव भेद से समझते हैं और भेद को छोड़कर अभेद में हमको कैसे आना, एक अंतर की कोऑर्डिनेशन की सुमेल करने की, भेद और अभेद के बीच में सुमेल करने की एक कला है, वो जहाँ तक नहीं होती है भेद में आने वाला बुद्धि वाला आदमी भेद में से निकल सकेगा नहीं और अभेद अनुभव होगा नहीं, ऐसा बनता है और ऐसा बन रहा है और ऐसा बना ही है, हर वक्त ऐसा बना है। इसलिए राजमल जी कहते हैं कि वैसे विकल्प भले ही प्रथम अवस्था में ठीक है, भला है, मैंने अपने स्थान में ठीक है, फिर भी देखो परंतु करके उड़ाया है इस बात को, परंतु स्वरूप मात्र अनुभव ने प्रभु झूठे हैं। निर्विकल्प अनुभव का स्तर अलग है, स्वविकल्प दशा वाला ज्ञान का स्तर बिल्कुल अलग है, दोनों स्तर में बहुत बड़ा अंतर है, ऐसी बात है। और वो अंतर में कितना अंतर है कि एक सच है एक झूठ है, एक प्रकाश है एक अंधकार है, इतना बड़ा अंतर है। वो कैसे कि अनुभव करके देखो तभी पता चलेगा, ऐसे बात अनुभव ने पर झूठे, बिना अनुभव इसकी इसका झूठापना मालूम नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या रही, हम भेद में खड़े हैं, भेद से समझते हैं और अभेद में हमको जाना है, बहुत बड़ी समस्या है। भेद को छोड़े कैसे हैं और अभेद को ग्रहण करें कैसे, तो बहुत बड़ी समस्या होती है। उस समस्या का समाधान पदार्थ निर्णय होने पर होता है, जो कृपालु देव ने 254 नंबर के पत्र में दिया, योजना बना करके वो पदार्थ निर्णय के स्टेज में होता है, इसके पहले नहीं होता। जो पदार्थ निर्णय तक नहीं पहुंचते और शास्त्र पढ़ते रहते हैं विकल्प में चढ़ जाते, वो विकल्प में चढ़ जाते, उनको कभी स्वानुभव नहीं होता, वो भेद में से निकल ही नहीं पाते, ऐसी परिस्थिति बन जाती है और भेद को भेद में ही चलते रहते हैं, वो हमेशा हमेशा भेद में चलते रहते हैं। रीत में तो कहेंगे योजना से चलना पड़ेगा पदार्थ निर्णय तक, निर्णय में अभेद स्वरूप लक्ष्यगत होती है, लक्षण से लक्ष्य में आता है वो अभेद चीज जाती है, फिर वजन अभेद पर चला जाता है और भेद का वजन छूट जाता है। इसके पहले भेद का वजन छूटता नहीं, ये परिस्थिति है, इसलिए इस रीति से काम करना पड़ता है, जो रीति से काम होता है उसी रीति से काम करना पड़ता है, ऐसी बात है। हाँ, यथार्थ नहीं होवे तो भूल पड़े ही पड़े, यथार्थ होवे तो साधन यथार्थ है, यथार्थ नहीं हो तो साधन यथार्थ नहीं है। जैसे लक्षण से लक्ष्य का ही पहचान हुई तो वर्तमान पर्याय का तो परिचय था, अनजाना तो ध्रुव स्वरूप से था, तो ध्रुव का निश्चय हुआ तब द्रिगुण पर्याय का यथार्थ निश्चय हुआ। इसके पहले कल्पना थी। दूसरी बात वो है कि द्रिगुण पर्याय आदि के जो भेद है वो अभेद सापेक्ष है कि नहीं? देखिए, भेद हमेशा अभेद सापेक्ष ही होता है। अब अभेद का ज्ञान नहीं हुए और अकेला भेद का ज्ञान हुए तो कल्पना हुई कि नहीं हुई? हाँ, कि हो गई। इसलिए अभेद के साथ ही भेद का ज्ञान होना आवश्यक है, ये बात साथ में है। और वो पदार्थ निर्णय में होता है, इसके पहले नहीं होता है। इसलिए सारी योजना बनाई है, बाकी कोई उपाय ही नहीं है, इसका कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। Thank you.